हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। नितय गौर हरिबोल 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 नितय गौर हरिबोल। हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ. तो आज के प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है. जो मंदिर हॉल में है और आश्रम में है सभी भक्तों का स्वागत है. तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं पंचम स्कंध से पहला अध्याय है और तीसरा श्लोक है. तो श्लोक दोहराएंगे हम. महताम खलु विप्रर्षे ఉత్తమ శ్లోక పాదయో ఛాయా నివృత్త చిత్తానాం న కుటుంబే స్పృహామతి. మహతాం ఖలు విప్రర్షే ఉత్తమ శ్లోక పాదయో ఛాయా నివృత్త చిత్తానాం న కుటుంబే స్పృహామతి. మహతాం ఖలు విప్రర్షే ఉత్తమ శ్లోక పాదయో ఛాయా నివృత్త చిత్తానాం న కుటుంబే స్పృహామతి. మహతాం ఖలు విప్రర్షే ఉత్తమ శ్లోక పాదయో ఛాయా నివృత్త చిత్తానాం న కుటుంబే స్పృహామతి. మహతాం ఖలు విప్రర్షే ఉత్తమ శ్లోక పాదయో ఛాయా నివృత్త చిత్తానాం న కుటుంబే స్పృహామతి. शब्दार्थ तात्पर्य और अर्थ श्रील प्रभुपाद के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की महताम परम भक्तों की खलु निश्चय ही विप्रर्षे हे विप्रो में ऋषि उत्तम श्लोक पादयो भगवान के चरण कमलों की छाया छाया से నివృత్త తృప్త చిత్తానాం జిన్కి చేతనా నాహి నహి కుటుంబే పారివారిక సదస్యో పర్ స్పృహామతి హి ఆసక్తి సహిత చేతనా. అర్థ జిన్ సిద్ధ మహాత్మాఓ నే భగవాన్ కే చరణ కమలో కి శరణ గ్రహణ शरण ली है वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतया तृप्त है. उनकी चेतना कभी भी कुटुंबी जनों में आसक्त नहीं हो सकती. तात्पर्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है नीताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ये छाया जगत जुड़ाया. उन्होंने भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया को इतना शीतल तथा सुंदर बताया है कि भौतिक कार्यों की अग्नि से सदैव संतप्त रहने वाले समस्त भौतिकवादी उन चरण कमलों की छाया में आकर पूरी पूरी राहत पाते हैं और तृप्त हो जाते हैं. गृहस्थ जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन का अंतर वही समझ सकता है जिसने परिवार में रहकर कष्ट भोगे हैं. अतः जो एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण में पहुंच जाता है वो फिर गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट नहीं होता। जैसा कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 59वें श्लोक में कहा गया है, परम दुष्ट्वा निवर्तते, अच्छा स्वाद चखने के पश्चात मनुष्य निम्न कार्यों का त्याग कर देता है। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की शरण में आते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि जो ये सेवा है भागवतम के ऊपर चर्चा करने की, मैं अच्छी तरह से मेरे शुद्धिकरण के लिए कर सकूँ। तो अभी ये जो पांचवा स्कंद चल रहा है उसके शुरुआत में ही परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को सवाल पूछ रहे हैं कि जो ये राजा वो शादी कैसे करते प्रियव्रत महाराज। तो ये अलग अलग चार श्लोकों में उन्होंने सवाल पूछा है, लेकिन आज के जो श्लोक है उस श्लोक में उन्होंने भक्तों का गुणगान किया है। उन्होंने कहा है कि जिन सिद्ध महात्माओं ने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है वो पूर्ण तरीके से तृप्त रहते हैं, एकदम संतुष्ट रहते हैं। और दूसरा बताया कि उनकी चेतना कभी भी अपने कुटुंबियों में आसक्त नहीं होती। तो इसके बारे में चर्चा करें। कुछ दिन पहले, अभी 3-4 साल हो गए शायद, हमारे आश्रम के हिंदी भक्त है उनको लेके गए थे, हमारे विश्वनाथ प्रभु और रामानंद प्रभु, हम सब मिलके तिरुपति गए थे 1-2 दिन के लिए। तो तिरुपति जाने के बाद उधर अनंतचार्य का वंशज रहते हैं उधर अनंतचार्य, तो 26वीं पीढ़ी चल रही है अभी। तो उनके पास लेके गए हमको हमारे विश्वनाथ कुरापुर और रामानंद प्रभु लेके गए। तो उन्होंने बहुत अच्छे पास टाइम बताए, तो उसमें से 1-2 मैं बताऊंगा और आगे चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बताया कि जैसे हमारे राजश्याम प्रभु को पूरी दुनिया से नहीं होता आता है, हमारे मंदिर में लोग भेजो, वैसे रामानुजाचार्य के सपने में भगवान आ गए, बालाजी भगवान। और उन्होंने कहा रामानुजाचार्य को, आचार्य आप तो पूरे दुनिया में भेज रहे लोग प्रचार के लिए, हर एक देवस्थान में
सेवा करने के लिए। लेकिन इधर तिरुपति में किसी को तो भेजो, इधर कोई नहीं है सेवा करने के लिए, आप किसी को भेजो। तो रामानुजाचार्य बोलते कि ठीक है। तो दूसरे दिन उनके 15,000 शिष्य रहते, अभी सबको किधर पूछने का, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि बाबा कौन जाना चाहता है उधर। तो एक्चुअली भगवान ने केवल अनंताचार्य को ही प्रेरणा दी उधर जाने के लिए, और रामानुजाचार्य को पता था कि अनंताचार्य जाने वाले, कि कोई तैयार नहीं हुआ। अनंताचार्य बोले कि मैं जाता हूँ, और अपनी पत्नी के साथ उधर आए, और बीच में बहुत बताया उन्होंने बहुत कुछ। लेकिन आते उधर आने के बाद पूरे जंगली जानवर वगैरह रहते हैं, उनकी पत्नी पूरी से डर जाती है, लेकिन वो मशाल लेके जाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो आपको डरना नहीं चाहिए ये प्राणियों से, क्योंकि अभी हम उनके एरिया में आ गए, वो हमारे एरिया में नहीं आए। तो हमको उनको रहना पड़ेगा उनके साथ। तो ऐसे कुछ दिन जाते, उनका सेवा रहता, क्या सेवा करते, वो फूल लाते जंगल से, हार बनाते और भगवान को पहनाते, ऐसा सेवा चलता रहता है उनका। तो एक दिन होता क्या है, एक दिन पुजारी को बालाजी भगवान कहते कि अनंताचार्य को बुलाओ, मुझे उनसे बात करना है। तो अनंताचार्य को पुजारी बोलता है कि आपको भगवान बुला रहे। तो अनंताचार्य बोलते हैं कि देखो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं अभी। मुझे बिल्कुल टाइम इतना सेवा, भगवान को क्या है किसको भी पकड़ के सेवा देंगे, मेरा क्या है, मेरा सेवा मुझे ही करना पड़ेगा। मेरे गुरु ने जो मेरे सेवा दिया है वो कौन आएगा करने के लिए, मैं ही करने वाला हूँ, वो आएगा नहीं, मेरे पास टाइम है नहीं, तो मैं आऊँगा नहीं, अभी नहीं आऊँगा। तो वो अपना सेवा करते बैठे, फूल चुनना है, हार बुनना है। तो 3 बार ऐसा भगवान ने बुलाया उनको, और अनंताचार्य बोले कि नहीं मैं ना आऊँगा, देखो मेरे लिए मेरे आचार्य की जो आज्ञा है वो सबसे बड़ी है, मेरे लिए वही भगवान है, बालाजी भगवान नहीं है मेरे लिए, ऐसा बोल देते थे उनको। तो इस तरह से बाद में उनका सेवा हो जाता है, हार बना के वो लेके आते और वो उल्टा आल्टर में जाते, तो भगवान बोलते आपका हार नहीं चाहिए मुझे। भगवान कहते उनको बिल्कुल नहीं चाहिए, आपने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, 3 बार मैंने आपको बुलाया आप आए नहीं, अभी आपकी सेवा मुझे नहीं चाहिए, आपका हार भी मुझे नहीं चाहिए। आप कहाँ से आए, श्रीरंगम से आए ना, आपकी पत्नी को लेकर चले जाओ यहाँ से, मैं आपकी सेवा नहीं चाहता, आप चले जाओ यहाँ से। तो ऐसा कहने के बाद आनंदाचार्य चुप बैठ गए, क्या करेंगे अभी। और वो सोचने लगे आनंदाचार्य कि अभी मैं पीछे वापस जाऊँगा, 15,000 शिष्य पूछेंगे क्यों वापस आए, क्या हो गया उधर, सेवा अच्छा नहीं था, रहने के लिए अच्छा नहीं था, कितने लोगों को जवाब दूंगा मैं। तो सोचते इससे अच्छा भगवान अकेले, भगवान के साथ हम सफल जवाब कर आर्ग्यूमेंट करेंगे थोड़ा भगवान के साथ। तो अनंताचार्य बोलते देखो भगवान आपको याद है क्या, आपने तो विश्वरूप प्रकट किया है, पूरे दुनिया में घूम घूम के आए आप, लेकिन ब्रह्मा जी की इच्छा से आपको इधर प्रकट होना था, ये तिरुमला जो पहाड़ी है इसके ऊपर, लेकिन ये आपका नहीं है, ये वराह क्षेत्र कहा जाता है। तो इधर आप जब आए तो वराह स्वामी को आपने पूछा मुझे जगह दो, तो वराह स्वामी ने आपको ना बोला था, 100 स्क्वायर फीट जगह देने के लिए भी वो बोले मैं नहीं दूंगा आपको जगह, बिल्कुल नहीं दूंगा जगह। तो फिर भगवान बालाजी भगवान बोलते कि आपको क्या समस्या है मुझे जगह देने के लिए। तो वराह भगवान बोलते कि आप बहुत सुंदर है, इधर लोग आएंगे तो सब आपको ही देखेंगे, मुझे कोई देखेगा नहीं, तो मैं मालिक होकर भी घाटे में जाऊंगा। तो मैं जो जगह दूंगा आपको, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है, बोले जो भी इधर आएगा पहला मेरा दर्शन लेगा, और पूजा जो भी की जाएगी पहले मेरी की जाएगी, बाद में आपके पास सब आएंगे, और तभी जाके किसी की तीर्थ यात्रा सफल होगी। तो ये कहने के बाद बालाजी भगवान बोले ठीक है। तो वराह स्वामी बोले ऐसा नहीं है, पूरा लिख के देना पड़ेगा आपको, मुझे पूरा एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो एक ताम्र पत्र के ऊपर पूरा लिख के दोनों का साइन, और बोलते मैं वराह भगवान बोलते जो भी भक्त इधर आएगा मैं उनको दिखाऊंगा मैं मालिक हूं, वो टेनेंट है इधर की। तो ये मैंने जगह दी है बालाजी को। तो अनंताचार्य बालाजी भगवान को बोल रहे याद है क्या आपको ये। तो भगवान को बोलते देखिए भगवान, ना आप इधर के मालिक है ना मैं इधर का मालिक हूँ, हम दोनों भाड़े करिए टेनेंट है। तो इसका मतलब क्या है, आप मुझे जाने के लिए नहीं बोल सकते और मैं आपको जाने के लिए नहीं बोल सकता। हाँ अगर वराह स्वामी बोलेंगे कि आप जाओ तो ठीक है मैं जा सकता हूँ, मेरे आचार्य रामानुजाचार्य मुझे बोलेंगे कि आओ तो ठीक है, लेकिन आप मुझे नहीं ले निकाल सकते आज, तो मैं इधर रहूंगा। तो ये सुनने के बाद बालाजी भगवान कुछ नहीं बोलते, वो हार लेते अपने हाथ से, अपने गले में डाल के लेते। और डालने के बाद फिर अनंताचार्य बोलते भगवान को, देखिए भगवान मैं इतना सेवा कर रहा हूँ कि पूरी तरह से जब मैं हार बनाता हूँ तो कली एक एक कली चुन के लाता हूँ, उसका हार बनाता हूँ, हार बनाने के बाद वो खिलता है आपको पहनाने के बाद, तो उसका जो सुगंध आता है उसके वो सुगंध से आपको जो संतुष्टि मिलती है वो मेरे गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मेरे गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए इसलिए मैं आपकी इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद बालाजी भगवान एकदम खुश हो जाते हैं, वाह बोलते हैं, मैंने इसलिए तो आपको गुस्सा दिलाया था, मैं यही सुनना चाहता था कि आपका भाव क्या है, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ आपकी सेवा से, आप इतने अच्छे भाव के आपने के गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए इतना अच्छा मेरा सेवा कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से कुछ दिन जाते, बहुत दिन जाने के बाद एक दिन क्या होता है, श्रीरंगम से रामानुजाचार्य के 50 शिष्य निकलते, वो बोलते कि हमको मिलने के लिए जाना है अनंताचार्य को और बालाजी भगवान का, हम दर्शन भी लेंगे, दर्शन लेंगे। तो उधर से निकलते हैं रामानुजाचार्य की परमिशन लेके निकलते हैं वो लोग। तो ये भगवान को पता चलता है, बालाजी भगवान को, अरे ये शिष्य आ रहे, तो भगवान क्या करते हैं छोटे बच्चे का रूप लेके जाते हैं, नीचे पहाड़ी से उतर कर नीचे जाते हैं। वो 50 लोग जितने आते हैं वो 3 महीने के बाद उधर आते हैं वो लोग, लेकिन आने के बाद भगवान उनको चरणामृत और प्रसाद की व्यवस्था करते, तो सब भक्त आ जाते हैं उधर, वो 50 भक्त आने के बाद देखते हैं यार ये छोटा बच्चा सब सेवा कर रहे हैं, वो पूछते हो आप कौन है, बोलते मैं अनंताचार्य का शिष्य हूँ। तो सब देखते अनंताचार्य का शिष्य कैसे हो सकता है, क्योंकि वो बोलते अरे आप कैसे शिष्य हो सकते हैं, क्योंकि आपको शिष्य बनाना है तो पहले रामानुजाचार्य की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको पूछना पड़ेगा, तब तक अनंताचार्य दीक्षा नहीं दे सकते, क्या भाजी परचेस करने जैसा है क्या दीक्षा शिष्य बनाना, इतना आसान नहीं है, उसके लिए क्वालिफाइड आदमी लगता है, बाद में जाके वो आपका जो आप जिसको गुरु बनाने वाले हो आपको देखेगा, फिर वो अनंताचार्य रामानुजाचार्य के पास जाएंगे, रामानुजाचार्य 50 सवाल पूछेंगे उनको कैसा है क्या है, उसके बाद आपको दीक्षा मिलेगा, और अनंताचार्य ऐसा करने वाले नहीं है, हम उनको जानते हैं वो ऐसा करेंगे नहीं, बिना रामानुजाचार्य के परमिशन के वो किसी को दीक्षा नहीं दे सकते, आपने अमृत भी दिया तो हमको नहीं चाहिए, आप कौन है पहले बताओ। तो भगवान परेशान हो जाते क्या भक्त है ये, चरणामृत लेके आओ, प्रसाद लेके आओ, इतने थके आए फिर भी ना बोले। तो फिर भगवान कहते ठीक है मैं 2 श्लोक बताऊंगा आपको, एक रामानुजाचार्य के ऊपर बताऊंगा गुणों के ऊपर और एक अनंताचार्य के गुणों के ऊपर बताऊंगा, फिर खाएंगे क्या आप। शिष्य बोलते नहीं वो बाद का बाद में देखेंगे, पहले श्लोक बताओ। तो फिर भगवान खुद कंपोज करते श्लोक, श्लोक की रचना करते और अनंताचार्य का इतना गुणगान करते उस श्लोक में, बहुत सारा गुणगान करते, तो ये सब खुश हो जाते अनंताचार्य का इतना गुणगान सुनने के बाद। उसमें भगवान बताते कि जो अनंताचार्य के पास गुण इतने गुण हैं, मैं अभी तक उनके गुण को हासिल नहीं कर पाया, इतने गुण उनके, इतना स्तुति करते भगवान। तो बाद में भगवान बोलते उनको कि अभी आप संतुष्ट है, नहीं नहीं देखो आपने अभी आपके आचार्य की स्तुति की है, शास्त्र के नियम के हिसाब से जब किसी आचार्य की स्तुति करते हैं तो उसके बाद उसके आचार्य की भी स्तुति करनी चाहिए, तो अभी रामानुजाचार्य के बारे में बताओ। तो फिर रामानुजाचार्य के बारे में भगवान और एक श्लोक बताते और उसमें उनकी स्तुति करते, उस स्तुति करने के बाद सब तो एकदम मोहित हो जाते, एकदम खुश हो जाते, फिर वो लोग प्रसाद लेते, चरणामृत लेते, उनको वो स्तुति इतनी अच्छी लगती है, वो श्लोक बाय हार्ट करते उधर ही, और पहाड़ चढ़ते समय पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक वही श्लोक आते रहते, बाद में ऊपर अनंताचार्य उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहते, तो देखते अनंताचार्य ये लोग गा रहे, बोले आप क्या गा रहे, किसने बताया आपको ये श्लोक, तो बोलते आपके शिष्य ने। अनंताचार्य बोलते मेरा शिष्य कोई नहीं है, मेरा कौन शिष्य आया इधर, ये सब जानवर मेरे शिष्य है, मेरा कोई शिष्य नहीं, आप पागल हो गए सब लोग, जैसे आम लोग पहाड़ चढ़ने के बाद भ्रमित हो जाते आप लोग भी भ्रमित हो गए। बोलते ठीक है आप भ्रमित हो गए, आप भगवान का दर्शन लो सब ठीक हो जाएगा। तो भगवान का दर्शन लेते हैं, फिर उस रात को भगवान उनके सपने में आते, बालाजी भगवान अनंताचार्य के सपने में आते और उनको कहते हैं कि मैंने ही छोटे बच्चे का रूप लेके इनकी सेवा की है। तो अनंताचार्य फिर रोने लगते हैं, भगवान आपने क्या किया, मेरा शिष्य का रूप लेके आपने उनका सेवा किया। भगवान बोले अरे आप इतना सेवा कर रहे मेरे, मुझे पूरा संतुष्ट कर दिया, तो मेरा बहुत दिन से इच्छा थी कि आपकी सेवा कैसे करूं मैं, तो आपकी सेवा मतलब आपके गुरु महाराज की सेवा करेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं आपकी सेवा करने का मौका ढूंढ रहा था, इसलिए मैं नीचे गया और उनकी सेवा की। तो बोले नहीं नहीं भगवान आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों किया ऐसा मेरे शिष्य का रूप लेके ऐसा, और रोने लगते अनंताचार्य। इस तरह से ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम उधर गए थे ना, तो हम जितने भी हिंदी भक्ति जाके आप पूछो उनको, इतना एक घंटा 5 मिनट लेक्चर दिया वो प्रभु जी ने, अनंताचार्य के 26वें वंशज है वो, तो इतना हम सब भूल गए थे। हम रामानंद प्रभु तो बोले अभी हमारी यात्रा सक्सेसफुल हो गई एक्चुअली, और इतने खुश थे हम, बहुत खुश थे। तो मैं वही सोच रहा था जब मैं श्लोक पढ़ रहा, प्रभुपाद का परपोट पढ़ा मैंने, कि इधर बताया है कि भगवान की जो लीला है, ये भक्त तो अभी देखो अनंताचार्य के साथ खुद भगवान लीला कर रहे, उनको कितनी संतुष्टि मिलती है, जब हम सुनते हैं तो हमको इतना अच्छा लगता है, तो उनको कितनी संतुष्टि मिलती होगी। तो इस तरह से भगवान के जो शुक्र, इधर परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त तृप्त रहते हैं, पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं, पूरी तरह से संतुष्ट रहते। तो ये ध्रुव महाराज भी अपने एक प्रार्थना में इसका वर्णन करते हैं कि भगवान ये जो भगवान के भक्तों का आनंद जो है संतुष्टि क्या है। ध्रुव महाराज बोलते हैं कि या निवृत्ति तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवंजन कथा श्रवणेन वास्यात् सा ब्रह्मणी स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्त काशी लुलितात् पतताम विमानात्। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमलों का ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वो ना ब्रह्मानंद की उस ब्रह्मानंद अवस्था से ही बढ़कर है जिससे मनुष्य अपने निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है अपने को, क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और काल रूपी तलवार से उसका जो आनंद है वो नष्ट कर दिया जाता है। तो ध्रुव महाराज इधर बोल रहे हैं कि भगवान आपके चरण कमलों का जो ध्यान करता है, जैसे प्रभुपाद भी बोल रहे हैं ना नीताय पद कमल, वो ध्यान करता है या आपके शुद्ध भक्त से कोई आपकी लीला कथा सुनता है, तो उसमें जो आनंद है वो आनंद ब्रह्मानंद में भी नहीं है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा है कि जो वो एक गोखुर के वो चिन्ह में जितना पानी बैठता है उसमें उतना भी नहीं है, एक इतना छोटा आनंद है। तो इधर इसके ऊपर ये श्लोक के ऊपर राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छा स्पष्टीकरण देते। महाराज ने कहा कि जो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने में जो आनंद है, जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्रील प्रभुपाद की, तो महाराज कह रहे थे कि जो भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेने के बाद, उनका ध्यान करने के बाद, भगवान की कथा सुनने के बाद जो सुख मिलता है वो भगवान को भी नहीं मिलता। वो भगवान को भी, जो भक्त को आनंद मिलता है ना, वो भगवान को भी नहीं मिलता, भगवान के स्वरूप में भी आनंद नहीं। हालांकि भगवान आनंद घन है, भगवान आनंदमय है, आनंद का स्रोत भी भगवान है, लेकिन ध्रुव महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आपके चरणों का ध्यान करके, आपके कथा का स्पान करके शुद्ध भक्तों से जो आनंद प्राप्त होता है वो आपको भी नहीं मिलता है, आपको भगवान को भी खुद को नहीं मिलता है, तो ये ब्रह्म में भी वो आनंद नहीं है। तो भगवान इतने सुखी नहीं है जितने के उनके भक्त सुखी है। महाराज कह रहे थे भगवान इतने सुखी नहीं जितने उनके भक्त सुखी है। भगवान हालांकि सब आनंद उनसे आता है, लेकिन भक्तों इतना आनंद उनको मिलता नहीं है। तो क्यों फिर आपका भक्त स्वर्ग की कामना करेगा, असंतुष्ट कैसे रहेगा, तृप्त ही रहेगा। और चैतन्य चरितामृत में भी ये भक्तों को जो मिलता है जो सुख, उसको आश्रय सुख कहा है। क्या कहा है? आश्रय सुख। और भगवान को जो सुख मिलता है उसको विषय सुख कहा है। इसका मतलब क्या है? भक्ति जो है ये लादिनी शक्ति की वृद्धि है, जैसे वृद्धि होती, तो जैसे भक्ति भगवान भक्त के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होती है, भगवान के भक्त के हृदय से वो प्रकट होती है भक्ति। तो जैसे कोई लता है, लता जमीन से उगती है और ऊपर जाती है, लता जमीन से उगती है, तो ऐसे ही भक्त का हृदय वो थाला है जिसमें भक्ति का जो लता आती है वो आधार लेती है। तो भक्त का हृदय आश्रय है भक्ति का, तो इसलिए भक्त को जो सुख मिलता है ना वो आश्रय सुख है, और भगवान को जो सुख मिलता है वो विषय सुख है। तो आश्रय सुख बड़ा रहता है विषय सुख से, तो इसलिए भगवान को इतना सुख नहीं मिलता जितना भक्तों को सुख मिलता है। तो ये जब भगवान ने देखा, अरे मैं खुद भगवान हूं और मैं लॉस में हूं, मेरे भक्ति एंजॉय कर रहे। चैतन्य चरितमृत में भगवान कहते हैं, अरे मुझसे तो राधा रानी को ज्यादा आनंद हो रहा है, ज्यादा सुख मिल रहा है, मैं तो पूरा घाटे में ही जा रहा हूं भगवान होके। तो क्यों ना फिर इसकी आशा लेके भगवान चैतन्य महापुरुष के रूप में आए। तो ये भक्त का आनंद का लेवल है, इतना भक्त को आनंद मिलता है। और देखिए भगवान चैतन्य महापुरुष के रूप में आए और किसके लिए आए, वो जो आश्रय सुख है ना उसका आस्वादन करने आए। और आने के बाद भगवान ने केवल रूप में आए नहीं, उन्होंने देखो चैतन्य महापुरुष ने भागवतम सुना है ना, कीर्तन किया, तब जाके उनको आनंद मिला। महाराज बोलते भगवान बन के आए ठीक है चैतन्य महा, लेकिन वो भगवान की कथा सुनते थे, भागवतम सुनते थे, गदाधर पंडित से सुनते थे भागवतम, और दो ही लीला सुनते, वो उतना आनंद तब जाके उनको उतना आनंद आया जितना भक्तों को आनंद आया। लेकिन महाराज बोलते भगवान जब खुद भगवान थे तो फीका फीका थे उनको आनंद नहीं आ रहा था, ये भक्तों को मिलने वाला आनंद है। तो इसलिए इधर परीक्षित महाराज बोल रहे, अरे आपके भक्तों तो इतने तृप्त होते हैं, इसलिए वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ये जो ये है ना इन्होंने प्रियव्रत महाराज कैसी शादी, वो इसलिए पूछ रहे कि यार इतना आनंद मिलता है भक्तों को, और वो खुद भी भक्त है ना, परीक्षित महाराज खुद भी भक्त है, उनको भी भक्ति का आनंद का अनुभव है, क्योंकि उनको तो गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिया था है ना, बाद में दिन पूरा वो उनका नाम भी परीक्षित पड़ गया, वो ढूंढ रहे थे भगवान को, तो उनको भी आनंद का अनुभव, इसलिए उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो महाराज और एक उदाहरण देते, कैसे समझेंगे आप कि भगवान से ज्यादा भक्तों को आनंद मिलता है, कैसे समझेंगे? भगवान महाराज बोलते एक लौकिक उदाहरण से आप समझ सकते। कोई एकदम सुंदर स्त्री है, वो सुंदर स्त्री अपने खुद के सौंदर्य का आस्वादन खुद नहीं कर सकती, उसको सामने वाला देख के नहीं तो उसको स्पर्श करके उसका आनंद ले सकता है। इसी तरह भगवान आनंद के आगार है, जितना सब अच्छा है भगवान के पास है, लेकिन उनकी सेवा करके, उनकी लीला कथा सुना के, उनकी लीला सुन के, उनको श्रृंगार करके, उनके मंदिर का मार्जन करके, जितनी भी भगवान की सेवा है उनके लिए फेस्टिवल करके, उनका प्रचार करके, जो आनंद वो भक्त लूटते भगवान का आनंद, वो सब भगवान भगवान से ज्यादा आनंद मिलता है। जिस तरह से एक स्त्री का सौंदर्य का आस्वादन दूसरा करता है, उसे सेम भगवान के जिस सुंदरता है, भगवान में जो आनंद है वो भक्त लूटते हैं। तो इस तरह से ये कहा। बाद में तीसरा बताया महाराज ने कि कुछ लोग भगवान बनना चाहते उनको लगता है कि भगवान से मिल जाने के बाद यह सबसे बड़ी सिद्धि है, भगवान जीव है भगवान के साथ एकाकार होता है तो यह सबसे बड़ी सिद्धि है। लेकिन महाराज बोल रहे थे राधागोविंद महाराज कि इनको शंकराचार्य से ही उत्तर देना पड़ेगा, कि शंकराचार्य क्या अपने षटपदी नाम का उनका कुछ ग्रंथ है उसमें बताते हैं, तारंगो ही समुद्र सामुद्र नहीं वो तारंग, वो बोलते कि समुद्र तरंग से बनती है, समुद्र से तरंगे बनती है, तरंगों से समुद्र नहीं बनता है, समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती है ना, तो तरंगों से समुद्र नहीं बनता, समुद्र ऑलरेडी है उसमें तरंगे बनती है। तो इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं बिंदु सागर में मिल गया तो भेद मिट जाएगा भगवान और भक्त का, है ना, भेद मिट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं कि समुद्र तो पहले से है कि नहीं, समुद्र पहले से ही है अपनी पूरी शक्ति के साथ, और किसी बूंद को समुद्र से मिलना है तो बूंद को समुद्र के पास आना पड़ेगा, वो समुद्र का भी बूंद के पास जाता नहीं क्या, कुछ नदियां आंखों में मिलती है तो नदियां आती है समुद्र के पास, समुद्र नहीं जाता उधर, है ना। इसी तरह से भगवान भगवान आपले अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ, अपने पूरे सौंदर्य के साथ, अपनी पूरी भगवत्ता के साथ पहले से है। करोड़ों करोड़ों जन अगणित ईश्वर परम कृष्ण पूरे इतने सालों से है। तो कोई अगर भगवान के पास जाएगा तो कोई जाएगा मिलने के लिए भगवान के साथ, एकाकार होने के लिए जाएगा, और कोई सेवा करने के लिए जाएगा, तो भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो सेवा करने के लिए जाएगा वो बुद्धिमान है, वो क्या है, वो बुद्धिमान है। क्योंकि भगवान की सेवा करने में जो आनंद है वो भगवान में भी नहीं है, वो भगवान को भी नहीं मिलता है आनंद। तो आप भगवान बन के क्या घाटे में जाएंगे, आप लॉस में है आप लोग। या फैक्ट है कि भगवान खुद भक्त बन के आते आनंद प्राप्त करने के लिए, तो आप भगवान बन के क्या करेंगे, आपको आनंद नहीं मिलने वाला। प्रभुपाद भी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई बेटा अपने पिताजी की सेवा करता है तो पिताजी को भी आनंद मिलता है और बच्चे को भी आनंद मिलता है। अगर बेटा बोलेगा आप मुझे आप में समा जाना है तो पिताजी डर जाएंगे। इस तरह से महाराज बोल रहे थे कि भाई ये आनंद जो है भक्तों को ज्यादा आनंद मिल रहा है। इसलिए आपके जो भक्त ध्रुव महाराज कह रहे हैं, जो लोग ये स्वर्ग का जो आनंद है वो क्या है, काल के तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वापस उनको इधर आना पड़ता है। तो क्यों एक भक्त आपका स्वर्ग में जाने का इच्छा करेगा, कभी नहीं करेगा इच्छा, ब्रह्मानंद प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। जैसे भक्ति राम स्वरूप सिंधु का लेक्चर है, भक्ति राम स्वरूप महाराज के लेक्चर है, वो बताते कि इतना आनंद भक्त को मिलता है, वो राधा रानी उसको इतना आनंद देती है कि उसका हृदय भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है उसका हृदय, ओवरफ्लो। बाद में उसमें शक्ति नहीं रहती आनंद सहन करने की, तो फिर बलराम जी आते मदद करने के लिए, वो आनंद सहन करने के लिए शक्ति देने के लिए बलराम जी आके उसको शक्ति देते, बाबा आप स्थिर हो जाओ, ये आनंद को डाइजेस्ट करो, तो उसकी शक्ति बलराम जी देते। इतना आनंद होता है भक्त को। और छठे आते हैं आप पढ़ते, भक्त को आनंद होता है तो भाग जाता है प्रसार करने के लिए बाहर, है ना। वो जब दर्शन करते हैं परमात्मा का, इतना ओवर फ्लो, वो आनंद ही उसका फ्यूल बन जाता है और भगाता है उसको, फिर वो प्रचार करता है। इस तरह से भक्त को बहुत आनंद मिलता है, पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। और 11वां ये 10वां अध्याय, 10वें अध्याय में वेद वेद भगवान की स्तुति करते, उसमें भी वो बताते हैं, दुरवगात्म तत्व निगमायतवात्तनोश चरित महात्म चरित महामृताब्धि परिवर्तन परिश्रम न परिलशन्ति कोविद पवर्गमीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहा। ये श्लोक में वेद क्या बता रहे, हे प्रभु कुछ भाग्यशाली आत्माओं ने आपकी उन लीलाओं के विस्तृत अमृत सागर में गोता लगाकर भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पा ली है। जिन लीलाओं को आप अगाध आत्म तत्व का प्रचार करने के लिए साकार रूप धारण करके संपन्न करते, ये विरली आत्माएं मुक्ति भी की भी परवाह नहीं न करके घर बार के सब सुख का परित्याग कर देती है, क्योंकि क्योंकि उन्हें आपके चरणों का आनंद लुटने वाले हंस समूह सदृश भक्तों की संगति प्राप्त हो गई। तो इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कोट किया है, वो तात्पर्य में लिखा है, इसमें जो परिश्रमणा शब्द है उसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, ये परिश्रमणा शब्द क्या है, ये शब्द है कि भगवान की लीला एकदम समंदर की तरह है और भक्त उसमें क्या करता है, गोते लगाता है, गोते लगाता है, भगवान की लीला सुनना, उनकी सेवा करना, जो भी है भक्ति, भक्त उसमें गोते लगाता रहता है। अभी गोते लगाए तो थक भी जाएगा ना, गोते लगाएगा तो थक जाता है, थक जाने के बाद थकता है, वो थकता है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं बोलते बस हो गया अभी अभी दूसरा कुछ करेंगे, नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो थकने के बाद भी बोलता है मुझे भगवान की सेवा ही करनी है, मुझे भगवान की सेवा ही करनी है, मुझे भगवान की कथा ही सुननी है, बाकी कुछ इच्छा करता नहीं है, वो कुछ भी इच्छा करता नहीं। उसको बोलेंगे आप मोक्ष चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, तो क्यों क्यों ऐसा करता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि क्योंकि भक्त की जो थकान है वही उसका आनंद का स्रोत बन जाती है। भक्त जो थकान है, जितना ज्यादा थकता है उतना उसको आनंद आता है, जितना ज्यादा थकता है उतना आनंद आता है। तो अभी इसको कैसे समझेंगे, हमारे दिमाग के बाहर है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते, क्या उदाहरण देते, जैसे स्त्री संघी आदमी रहते, हमेशा स्त्री का संग करने की आदत है, पूरी तरह से स्त्री संघी, जब वो स्त्री का संग करता है ना तो वो थक जाता है, लेकिन वो थकान से उसको आनंद आता है। एग्जैक्ट ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे ही भगवान का भक्त जब भगवान की सेवा करता है थक जाता है, लेकिन वो थकान उसके लिए सुख वहां है, आनंद बन जाती है, आनंद बन जाती है। इतना वो नाचेगा, उसका जब भगवान का कीर्तन करता है, लीला सुनता है, तो टेढ़ पूरा अष्टविकार प्रकट हो जाते हैं। वो कभी इधर घड़घड़ा के ये करता है, कभी हाथ पटकता है, कभी चिल्लाता है, तो उसकी वजह से उसको थकान नहीं महसूस होती, उसको और आनंद आता है, और आनंद आता है। तो देखो, हम ये इसको देख सकते प्रैक्टिकल में, जैसे हमारे सब आचार्य क्या भयानक प्रचार किया वो लोगों ने, भक्ति विनोद ठाकुर को कितने बार बीमार पड़े हो, हम होते तो भक्ति व्यक्ति सब छोड़ देते थे, बीमारी बीमारी कोई लेके गले में बैठ के रहते, नहीं नहीं मैं बीमार हूँ, कुछ कर रहा नहीं मैं बीमार हूँ, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा क्रांतिकारी प्रचार कर दिया, चैतन्य चरणामृत लेके आए, सब लीला स्थल ये कर ले कि कितने सारे लोगों को प्रचार करते थे। बाद में प्रभुपाद, प्रभुपाद का भी जीवन हमने तो सुना है, देखा है, हम जी रहे उनके जीवन के साथ, तो क्या उनका शेड्यूल क्या है, थकते नहीं है, दो तीन घंटे सोते थे प्रभुपाद। हम अगर 2 घंटे सोएंगे दूसरे दिन गिर जाएंगे इधर आके धड़ाधड़कन, इधर आने का भी जरूरत नहीं, वो रूम में ही गिर जाएंगे हम तो कितना ये लोग, इसलिए ये सीक्रेट है भक्तों का कि जितना वो भगवान की सेवा करता है वो आनंद बढ़ता जाता है उसका, वो थकान नहीं, वो आनंद में परिवर्तित रहता है। तो मैं वही सोच रहा था कि हमारे मंदिर में भी उदाहरण राधेश्याम प्रूफ जब बीवी बीवी के क्लास होते थे तो 6 घंटा तो शेड्यूल क्लास है, 6 घंटा बोलना है आपको, और प्रभु जी को कभी टाइम पूरा नहीं बोलने के लिए कभी भी टाइम पूरा नहीं, हमेशा 1-1.5 घंटा प्रभु जी, 1 घंटा तो ज्यादा होता था। अभी इतना बोलने के बाद बीच में भी क्या, ऐसा नहीं कि प्रभु जी चुप बैठे, ये लेक्चर होने के बाद सब उनको घेर लेंगे, सवाल पूछेंगे, मतलब बोले ही बोल रहे रहे, बोलना है कितना बोलेगा आदमी। मेरा अनुभव क्या है, मैं जब नगर में जाता हूँ 3 लेक्चर देता हूँ ना, दिन भर 3 बार खाया हुआ सब डाइजेस्ट होता है, और 2 बार खाने की इच्छा होती, लेकिन प्रभु जी को हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं अभी भी, इतना शाम को रोज बोल रहे हैं, पिछले 50 दिन से नॉन स्टॉप, आज 51वां दिन है शायद, नॉन स्टॉप एक के बाद एक। तो हम खुद अपनी आंख से देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त थकता नहीं है, उसकी जो थकान है उसको आनंद प्रदान करती है, और वो और स्पीड से और उत्साह से भगवान की भक्ति का सेवा करता है। तो इसमें ये तात्पर्य, इस तात्पर्य में और बताया है कि किस तरह से वो केचित शब्द बताया है, वो केचित शब्द का भी अर्थ बता दे, केचित मतलब भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता, मोक्ष चाहता नहीं और स्वर्ग का पद भी नहीं चाहता है, तो ये जो समर्पण है मुक्ति को ना बोलना, स्वर्ग को ना बोलना, इतना बड़ा समर्पण दुनिया में किधर नहीं है, कोई नहीं कर सकता ऐसा, केवल भक्ति कर सकता है, ये सबसे बड़ा समर्पण है। और होता क्या है, भगवान के भक्तों की जो घर बार की जो उनकी आसक्ति है वो ऐसे ही चली जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि घर बार का, उनको कुछ पता नहीं चलता ऐसे। इसलिए इधर परीक्षित महाराज बोल रहे कि उनकी चेतना कभी भी कुटुंब जनों में आसक्त नहीं होती है। तो ये परपोट में कहा है कि उनका कुटुंब कौन बन जाता है, उनके गुरु, उनके वैष्णव सब, और बताए उनके शिष्य प्रशिष्य, वही उनका कुटुंब बन जाता है, वह क्या बन जाता है, उनका पूरा कुटुंब बन जाता है उनका। तो इस तरह से भक्त को यह आनंद मिलता है, इसलिए वो तृप्त रहता है। अभी और एक श्लोक है ध्रुव महाराज की प्रार्थना में, तो ध्रुव महाराज बोलते है तेन स्मरन्ते तितराम प्रियमी समर्थ्यम ये चान वत सुत सुहृद गृह वित्त दारा ये त्वपचना भवदीय पदा रविंद सौगंध्य लुब्ध हृदय शुकृत प्रसंगा। इसमें ध्रुव महाराज बोल रहे हे कमल नयन भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह न तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त होता रहता है और न अपनी संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है। जो भौतिकवादी पुरुषों के लिए अत्यंत प्रिय है, वस्तुतः वह उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता है। तो ये भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो इसका जो इसके ऊपर राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि इसमें अतिथितराम ये शब्द है। अतिथितराम ये शब्द क्या है? इसका मतलब है इस दुनिया में सबसे ज्यादा जीव को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? उसका शरीर। इतना प्रिय है कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकती। इतना प्रिय है ये, या अतिथितराम शब्द है, इसका अर्थ है इतना प्रिय है। लेकिन महाराज बोल रहे थे, ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आपकी लीला कथा इतनी आकर्षक है, उसका आनंद इतना दिव्य है कि ऐसा जो शरीर है जो इतना प्रिय है, अतिथितराम है, जिसका वर्णन हो नहीं सकता है, शास्त्र भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, वो शरीर भूल जाता है। वो शरीर कोई व्यक्ति अगर भगवान की लीला कथा सुनता है तो वो शरीर भूल जाता है, पूरी तरह से भूल जाता है। और इस श्लोक में और एक श्लोक बताए, एक शब्द बताए, उस शब्द में लिखा है कि भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुब्ध हृदयेषु। इसका अर्थ महाराज बताते हैं कि इसका अर्थ क्या है, भगवान के चरण कमल इतने शक्तिशाली क्यों है? तो इसका विश्लेषण दिया है कि भगवान के चरण कमल जो कमल है उसके भी कोटि 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 गुना ज्यादा सुंदर है, उससे भी कोटि गुना ज्यादा सुकुमार है और सुगंधित है। क्या है? उससे भी ज्यादा सुगंधित है। जो वो सुगंध है, वो सुगंध के ऊपर जिन भक्तों का मन लुब्ध हो गया है, उनका संगति आप करेंगे तो आप देह को भूल जाएंगे, आप देह को भूल जाएंगे। और इधर तो साक्षात भक्त का वर्णन होता है, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं भक्त, ये तो भक्त संगति जिन जो उनका संगति करते हैं वो अपने शरीर को भूल जाते हैं, तो जो उनके सुगंध में लुप्त हो गए भगवान के चरण कमलों की, तो उनका तो क्या होता होगा, वो सोचना नहीं चाहिए। और आगे कहते हैं कि इधर सौगंध का अर्थ है कि भगवान के गुण, भगवान की कृपा, भगवान का यश, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की लीला, इसके ऊपर जिन भक्तों का मन लुप्त हो गया है, तो ऐसे भक्तों की अगर कोई साथ करता है, उनकी सेवा करता है, उनका संग करता है, तो ये शरीर को भूल जाएगा, वो याद नहीं रहेगा। अभी मेरे पास उदाहरण है लेकिन टाइम नहीं है, मैं आगे का बताता हूं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते भक्ति करने का ये विशेष लाभ है। प्रभुपाद ने बोला है विशेष लाभ शब्द बोला है तात्पर्य में। प्रभुपाद योग मार्ग से भक्ति की तुलना करते हैं, भक्ति की बोलते हैं कि भक्ति में शुरुआत से भक्तों को पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन योग मार्ग योगी क्या करता है, थोड़ा कसरत करेगा, उसको भक्ति के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रहता है, तो कसरत करके वो ट्राई करता है भक्ति में उसकी मार्ग में प्रगति करने का। लेकिन प्रभुपाद बोलते कि नहीं, भक्त को शुरुआत में पता रहता है वो शरीर नहीं आत्मा है, तो शुरुआत से वो एक शुद्ध भक्त की संगति की ढूंढने का प्रयास करता है, उसकी सेवा करने का प्रयास करता है, तो उसको शुरुआत से पता रहता है कि वो शरीर नहीं है, इसलिए जीवन के द्वंद्वों में अटकता नहीं, हो अपने घर परिवार पत्नी बच्चे इसमें कभी अटकता नहीं है, वो द्वंद्वों से विचलित भी नहीं होता है। ये भक्ति का विशेष लाभ है, प्रभुपाद कह रहे ये विशेष लाभ है। लेकिन जो योग मार्गी आसक्त हो जाता है अपने शरीर में, लॉस है उनका। इस तरह से उनकी तुलना करके प्रभुपाद बोल रहे भक्ति करने का ये विशेष लाभ है। अभी और एक श्लोक है ये इधर हमारे कौन सा स्कंद है, पहले स्कंद में 11वां अध्याय 38वां श्लोक है, द्वारका, श्री कृष्ण द्वारका में आगमन, उसमें कहा गया है, एतत् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्तोपि तद्गुणे न युज्यते सदा आत्मा न युज्यते सदा आत्मा स्थेस्तता बुद्धि तथाश्रया। तो इसमें कहा गया है, ये तो भगवान की स्तुति है और उसमें भक्त की भी स्तुति है। ये कहते हैं कि ये तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में नहीं रहते हुए भी उनसे भौतिक प्रकृति के इधर रहते हुए भगवान इससे प्रभावित नहीं होते भौतिक प्रकृति से। तो उसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर लिए वे भी कभी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, इनका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद षड़ गोस्वामियों का। षड़ गोस्वामी बहुत अमीर लोग थे सभी, लेकिन संन्यास ग्रहण करके पेड़ के नीचे रहते थे वो सब लोग। देखा जाए तो एकदम एक भिक्षुक की तरह रहते थे वो, रोज भिक्षा मांगते थे और एकदम सिंपल जीवन जीते थे, हम सबको पता है षड़ गोस्वामी। लेकिन फिर भी और वो आम आदमी यानी संसारी लोगों के साथ मिलते जुलते थे वो सब, पूरा उनके साथ डीलिंग करते थे, फिर भी भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न जो द्वंद्व है वो द्वंद्व में कभी नहीं फंसे वो लोग। यहाँ तक के डायरेक्ट जैसे सनातन गोस्वामी को कहा जाता है ना, सब लोग उनको पर्सनली पहचानते थे और घर वालों के साथ उनका ऐसा डायरेक्ट संबंध था, है ना। तो फिर भी ये गोस्वामी कभी ये द्वंद्वों में फंसे नहीं। और एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखते प्रभुपाद उधर के, द डिविनिटी एंड हिज एसोसिएट्स आर ऑन द सेम ट्रांसेंडेंटल प्लेन एंड देयर ग्लोरीज आर ऑलवेज सैंक्टिफाइड बाय द एक्शन ऑफ योग माया और द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। तो इस तरह से भगवान के भक्त बहुत संतुष्ट रहते। और इसके बारे में, ये द्वंद्व के बारे में अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पिछला स्कंद हुआ। ये स्कंद में प्रचेताओं का भी एक श्लोक है जो भगवान का गुणगान करते हैं प्रचेता, हाँ, तो उसमें भी वो ये द्वंद्व के बारे में भक्त का गुणगान करते। वो कहते शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठाय मनस्य पार्थम विलसद्वयाय नमो जगत स्थानलय योद येषु घृत माया गुण गुण विग्रहाय। इसमें जो मनस्य पार्थम विलसद्वयाय है इसके ऊपर, ये श्लोक के ऊपर गौरंग दर्शन पर उन्होंने लेक्चर दिया था, तो उनका लेक्चर ही सुना है मैंने। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये मनस्य पार्थम विलसद्वयाय, मतलब भगवान का जो भगवान के जो भक्त है वो भौतिक प्रकृति में रहते हैं लेकिन ये द्वंद्व उनको मीनिंगलेस लगता है, मीनिंगलेस लगता है, निरर्थक लगता है। वो प्रार्थना करते हैं ये प्रचेता के, भगवान अगर आपके चरण कमलों में आप में अगर किसी का मन मग्न हो जाए, स्थिर हो जाए आपके ऊपर, तो ये भौतिक जगत का द्वंद्व वह क्या लगता है, व्यर्थ मीनिंगलेस, टोटली मीनिंगलेस लगता है। तो गौरंग दर्शन प्रभु वही बता रहे थे कि ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व क्या है, ये इफेक्ट कैसे करता है। जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे, जितनी मात्रा में हम भगवान को सरेंडर है, उतना ये द्वंद्व हमको, ये द्वंद्व हमको परेशान नहीं करेंगे। इससे इस जितना हम भगवान को शरण जाएंगे उतनी उनको हमको ये मीनिंगलेस लगे, जितना हम शरण जाएंगे। और ये द्वंद्व है जो इस दुनिया का भौतिक जगत का द्वंद्व तीनों गुणों से उत्पन्न, ये हमारे भक्ति के ऊपर डिपेंड है। जितना क्या बोले वो, जितना हम हमारे जो उसको लड़ने का जो शक्ति है वो भक्ति से आता है हमारे। जितना हम ज्यादा शरण होके भगवान की भक्ति करेंगे उतना ये द्वंद्व से लड़ने के लिए आपको शक्ति ज्यादा प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसका एक उदाहरण है, अभी टाइम नहीं, अभी टाइम खत्म हो गया, लेकिन तुकाराम महाराज के जीवन में हम देखते हैं जब वो उनका घर एक दिन चला गया था, उनका घर एक आदमी ने अपने गिरवी रख के चला गया, तो फिर भी उनको शोक नहीं हुआ कुछ। और कुछ दिन बाद उसने जो दावा किया था कि मेरा खेत पूरा लूट गया, इनको मैंने रखवाली के लिए बिठाया था लेकिन इन्होंने रखवाली नहीं की इसलिए मेरा लॉस हो गया, मेरा रेगुलर अनाज भी मुझे नहीं मिला, तो इसलिए वो पंचायत बिठा के उनका घर अपने नाम पे करता है। तो तुकाराम महाराज कुछ नहीं, जय जय राम कृष्ण हरि इतना ही बोलते, कुछ बोलते नहीं। बाद में कुछ दिन बाद उनको गाँव वाले पूछते आपके खेत में कितना धान आता था, वो बोलता है दो खंडी। दो खंडी मतलब कुछ तो रहेगा, दो पोता दो ड्रम ऐसा कुछ तो रहेगा। तो बाद में होता क्या है, भगवान देखते आ रहे मेरे भक्त का घर ही चला गया, तो भगवान इतना दाना देते 17 खंडी 17 खंडी आ जाता है उसके खेत में। तो गांव वाले देखते आ रहे, बोला था 2 खंडी आता है तो 17 आ गया, तो फिर क्या करते वो 15 का 15 खंडी क्या करते, तुकाराम महाराज को बोलते हैं आपका अनाज है हमारा नहीं है, मुझे तो दो ही आता था, फिर भी तुकाराम महाराज बोलते हैं मुझे अनाज नहीं चाहिए। उनका घर गया तो भी कोई शोक नहीं हुआ उनका, और उनको इतना अनाज आया तो भी कुछ नहीं लिया, उन्होंने चले गए वहां से। अब पिक्चर में दिखाया वो बांटते हैं, लेकिन वृंदावन प्रभु अपने किताब में लिखते कि उन्होंने लिया नहीं वो अनाज। इस तरह से भगवान के भक्त को इस दुनिया का द्वंद्व मीनिंगलेस निरर्थक लगता है, इसलिए वो तृप्त रहता है। इसलिए इधर जो परीक्षित महाराज इतना सवाल क्यों कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, इतना आनंद भगवान भक्तों को आता है फिर भी कैसे कैसे वो ऐसा कर दे, इसलिए सवाल पूछे। अब इसका आगे का कहानी आगे जाएगा। हरे कृष्णा, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निधाय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।